الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ اعراف کی ان آیات کی تفسیر ہم پچھلی کلاس میں پڑھ رہے تھے، اگرچہ کہ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ جمعے کے بیان کے اندر بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا، لیکن ایک تو یہ کہ اس میں نہ جانے کون لوگ سن رہے تھے کون نہیں سن رہا تھا، اور دوسری بات یہ کہ کلاس کی ایک الگ ترتیب ہوتی ہے، بیان کی الگ ترتیب ہوتی ہے، اس میں سوال جواب کا بھی آپشن اوپن ہوتا ہے، اور طالبات اور طلباء کی برکت سے کچھ اور بھی چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ کچھ جگہوں پر نہیں ہوتی، ہر جگہ کا انداز مختلف ہوتا ہے، ہر جگہ کے الگ تقاضے ہوتے ہیں وغیرہ، تو اس وجہ سے ہم ان باتوں کو پھر دوبارہ پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کی ان آیات میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کرتے ہوئے پھر بات یہاں آگے چلائی کہ اے اولاد آدم یا بنی آدم، تحقیق کہ ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر ایک لباس، یواری سوآتکم وریشا، کہ جو کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھاکے اور ساتھ ساتھ ریش کا بھی کام دے، آرائش، ٹھیک ہے، آرائش کا بھی کام دے، اور لباس التقوی جو ہے وہ تمہارے لیے، یعنی وہ زیادہ بہتر ہے، ذالکا خیرن، زیادہ بہتر، ذالکا یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ تم غور کرو، ٹھیک ہے نا، جیسے پہلے بھی بات آپ سے کئی دفعہ ہو چکی ہوگی یقیناً کہ سارا کا سارا جو معاملہ ہوتا ہے وہ غور کرنے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، ہم غور نہ کریں تو سامنے سے پہاڑ بھی ہو کے گزر جائے کچھ پتہ نہیں لگے گا، ہے نا، بس ایسے ہی کچھ بھی ہو جائے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں کچھ بھی کہہ دیا جائے، ہمیں اگر دماغ استعمال نہیں کریں تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، تو وہی بات آ گئی پے اٹینشن کرنے والی نا، وہ جو ہماری ساس مرحومہ فرمایا کرتی تھی ہیں، تم لوگ پے اٹینشن نہیں کرتے ہو، تو لعلہم یذکرون، تاکہ تم لوگ پے اٹینشن، ہیں انگریزی بھی بولیں تو ذرا ایسی کہ ان کو بھی تکلیف ہو، ٹھیک ہے نا، کہ تم پے اٹینشن کرنا شروع ہو جاؤ. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، لا یفتننکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم، جیسے کہ اس نے نکال باہر کیا، حالانکہ اس نے نہیں نکالا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے نکالا تھا، وہ تو سبب بنا تھا نکالنے کا نا، تو جیسے کہ اس نے نکالا تمہارے والدین کو جنت سے، ینزع عنہما، اس حال میں کہ وہ یعنی اتر گیا ان کا، یا اس نے اتار دیا، انہما، ان کے اوپر سے، لباسہما، ان دونوں کا لباس، ٹھیک ہے، اب یہ بھی اس نے خود تو نہیں اتارا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتر گیا تھا، لیکن منسوب اسی کی طرف کر رہے ہیں، دیکھیں بلیم جو ہے نا وہ شیطان کی طرف ہی ڈال رہے ہیں، کیونکہ آدم اور حوا جو ہیں یہ کوئی گنہگار، خطاکار اور باغی نہیں تھے، ہے نا، ان سے بھول بھی ہو گئی تھی اور اس نے اتنی زیادہ جو ہے وہ قسمیں بھی کھائی تھیں، جھوٹ بھی بولا تھا اور نہ جانے کیا کیا، ٹھیک ہے، تو یہ اچھے خاصے جس کو کہتے ہیں نا بھولے بھالے، ठीक है ना, इनको ये सारी तफसीलात नहीं पता थी उस वक्त तक ना, ये तो बिल्कुल इब्तिदाए आफरीनश का ज़माना था। तो अल्लाह ताला को इनसे कोई कोई दुश्मनी, कोई बुग़्ज़, कोई बड़ी नाराज़गी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। सारा का सारा मसला तो शैतान के साथ था, तो ब्लेम डाल रहे हैं शैतान के ऊपर। उसने इनको निकलवा दिया, उसने इनको निकाल दिया, बल्कि उसने इनको इनसे उतार उतार दिया, ठीक है ना। तो बात ऐसे फरमा रहे हैं अल्लाह ताला कि हमारे दिल में इसकी और ज्यादा नफरत पैदा हो, नफरत पैदा हो, है ना। अल्फाज के इस्तेमाल से, चॉइस ऑफ वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, चॉइस ऑफ वर्ड्स से मोहब्बत भी पैदा हो जाती है, राइट। और चॉइस ऑफ वर्ड्स, अल्फाज के चुनाव, चॉइस, चुनाव, ऐसा चुनाव कर सकते हैं आप अपने अल्फाज का कि सुनने वाले के दिल में किसी चीज के बारे में नफरत पैदा हो जाए, है ना। एक ही वाकये को आप ऐसे अल्फाज से बयान कर सकते हैं, या तो मोहब्बत पैदा हो जाए या नफरत पैदा हो जाए। अल्लाह ताला नफरत पैदा करने के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। काश के हम गौर करें अल्लाह ताला के अल्फाज पर कि कहना क्या चाह रहे हैं अल्लाह ताला, क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना। इसकी वही मिसाल है, यानी इसी तरह की एक और मिसाल कुरान के अंदर, जहाँ पे अल्लाह ताला जो है वो बनी इसराइल को बता रहे हैं कि ये जो फिरौन है ना, ये तुम्हारे बेटों को मार दिया करता था और तुम्हारी औरतों को गुलाम बना लिया करता था। याद है आप लोगों को, पहले भी बात हो चुकी है हमारे हजरत के बयान से, हमने भी इसको सुना कि बेटों को मारता था, बेटियों को नहीं गुलाम बनाता था, बल्कि औरतों को गुलाम बनाता था। औरतों का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, ताकि दुश्मनी दिल के अंदर उसकी नफरत और बढ़े, गैरत जागे, गैरत जागे मुसलमान की, बनी इसराइल उस वक्त के मुसलमान थे ना, उनकी गैरत जागे कि अच्छा हमारी औरतों के साथ ये लोग जिना किया करते थे, छोटी बच्चियों के साथ। तो भाई बच्चों को मार देना, बच्चियों को मार देना भी कोई कोई कम बुरी बात नहीं है, लेकिन एक गैरतमंद आदमी के लिए जो है उसकी औरत के साथ जो है वो बदतमीजी करना जो है ना, वो इससे भी ज्यादा खून खौला देने वाली बात है, ठीक है। तो गैरतमंद मर्द जो होते हैं ना, वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी औरत के साथ कोई इस किस्म का काम करें। तो अल्लाह ताला की, देखें अल्फाज का चुनाव फर्क पड़ जाता है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो है वो बारीकियों के अंदर फिर हमारे उलमा ने बातों को जाकर के खोला, दियुरियहुमा, ताकि दिखा दे, वही बात दोबारा से हो गई कि दिखा दे, सौआतिहिमा, उन दोनों की शर्मगाहें उनके ऊपर, इन्नहु यराकुम, बेशक वो तुमको देखता है, हुआ व कबीलुहु, वो भी और उसके कबील के लोग भी, उसके कबील के लोग भी, है ना। उसके कबील, वैसे तो शैतान का कबीला, शैतान को अल्लाह ताला ने ये पावर दी है कि वो हमें देख सकता है, ठीक है। लेकिन जो इंसानी शैतान हैं, उन्होंने भी सर्वेलेंस की ऐसी ऐसी चीजें बनाई हुई हैं, है ना। हर चीज को वो मॉनिटर कर रहे हैं बैठ करके, है ना। वो फोन को भी सुन रहे हैं, वो इंटरनेट को भी मॉनिटर कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप को भी मॉनिटर कर रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर कभी गौर किया कि जब आप कोई मैसेज लिखती हैं तो उसके ऊपर व्हाट्सएप का एक मैसेज लिखा हुआ आता है आपकी विंडो के ऊपर कि दिस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन इज नॉट बीइंग सीन बाय एनीवन एल्स एक्सेप्ट द टू पीपल हु आर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन, नॉट इवन बाय व्हाट्सएप। कभी गौर किया, ये जुमला लिखा हुआ होता है, इसी तरह का जुमला लिखा होता है कि कोई भी नहीं देख रहा आप इस आपकी इस कॉन्वर्सेशन को, सिर्फ आप देख रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं वो देख रहा है। और ये भी लिखते हैं कि इवन व्हाट्सएप भी नहीं देख रहा। इसको कहते हैं क्या, उर्दू में एक मुहावरा है, इस व्हाट्सएप की इस जुमले को समझाने के लिए उर्दू में एक मुहावरा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उसके बाद भी तफसील भी तो होती है ना उसके अंदर। वो उर्दू का मुहावरा किसी को आता है जहन में, ये बात वो कहते क्यों है कि कोई भी नहीं देख रहा, आप बेफिक्र होकर के बात करें। मुहावरा आता है किसी के जहन में, मुहावरा उर्दू का, तिनके वाला मुहावरा, चोर की दाढ़ी में तिनका, है ना। कि जो चोर होता है ना, तो उसी को सबसे ज्यादा फिक्र पड़ी हुई होती है कि कोई उसको चोर ना समझे, क्योंकि वो है ही चोर। तो इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। व्हाट्सएप को व्हाट्सएप सब कुछ देख रहे होते हैं, वो सब कुछ उनकी नगाहों के सामने होता है ना। काश के हमें उनकी फिक्र, इसकी बजाय ये नहीं कि हम जो है वो पैरानॉइड हो जाएं, हम उनके बारे में जो है उनसे खौफ में मुब्तला हो जाएं, काश के हम जो है वो अपने आप को याद दिलाएं कि हमारा परवरदिगार भी तो सब कुछ देख रहा है ना, जो करामन कातिबैन, जो फरिश्ते हैं वो भी तो सारी चीज़ें लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो मेरा मकसद आपको व्हाट्सएप का खौफ दिलाना नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मेरा मकसद ये है कि कितने मक्कार लोग हैं ये, कितने झूठे फरेबी हैं, और कितना जो है ना वो चोर हैं, कि इनको इस बात को यकीन दिलाने में कितनी इनकी फिक्र पड़ी हुई है कि लोग समझें कि ये कुछ नहीं देख रहे हैं, हालांकि ये सब कुछ देख रहे हैं, पक्की बात है ये, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ठीक है ना, हाँ ये और बात है कि इनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक की बैठ करके पढ़ें, हर एक की बैठ के पढ़ने का तो किसी के पास टाइम नहीं है, कोई इम्पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन उन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाए हुए हैं इस तरह के, ठीक है, जो कि मॉनिटर करते रहते हैं हर वक्त, ठीक है, कि कोई इनके इनके मिजाज के खिलाफ कोई बात इसके अंदर आए तो फिर उसको कुछ करें, सही है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, जब ये जो है ना वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि हम कोई नहीं देख रहे आपकी बात, आप बेफिक्र हो जाएं, सही है। तो अल्लाह ताला हिफाजत करता है तो फिर हम बचे रहते हैं, नहीं हिफाजत कर, अल्लाह ताला की हिफाजत अगर ख़त्म हो गई हमारे ऊपर से, उड़ गई, तो फिर कोई नहीं बचा सकता हमें, ठीक है ना। तो बहरहाल तो ये शैतान जो है ना और इनके जो कबील के लोग हैं ना, ये सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है। तो इन्नहु यराकुम, ये तुम्हें देखते हैं, ये भी और इनके कबील के लोग भी, मिन हैथु ला तरौनहुम, जहाँ से तुम इनको नहीं देख सकते, तुम इतनी टेक्नोलॉजी बना ही नहीं सकते, ठीक है ना, कोशिश कर करके हम अपने दिमाग ख़राब करते रहते हैं, हम इनकी जैसी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते, ठीक है ना, चाहे कुछ भी कर लें हम। अच्छा, और दूसरा ये कि जो जिन हैं तो जिन वाली टेक्नोलॉजी तो वैसे ही इंसान नहीं बना सकता, ठीक है ना, लेकिन ये जो काफिर होते हैं ना, तो इन्होंने जिन्नों के साथ जो है वो साजबाज भी बड़ी करीबी होती है, तो अगरचे के काफिर मुसलमान काफिर इंसान वो जिन्नों की तरह देख नहीं सकते, लेकिन जिन्नों के साथ उन्होंने खूब जो है वो अपने साजबाज करके रखे हुए होते हैं, तो वो उनकी इस सलाहियत को इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, यानी जिन इनकी बाकायदा असिस्टेंस कर रहे होते हैं, इनकी मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो हमारे लिए क्या रह जाता है फिर उसके बाद, बैठ करके जो है वो लेबॉरेटरी के अंदर तजुर्बे करते रहते हैं बजाय इसके अल्लाह को मनाए, क्योंकि जिन से तो फिर अल्लाह के अलावा और कोई नहीं बचा सकता, ठीक है ना, कोई मिसाइल, कोई एटम बम और कोई जो है वो टेक्नोलॉजी और कोई जहाज जिनों से तो नहीं बचा सकता भाई, ठीक है, बचाना तो बहरहाल अल्लाह ही ने है। तो हम काश के अल्लाह ताला को अपनी तरफ कर लें या हम अल्लाह की तरफ हो जाएं, ठीक है ना, उसकी हमें परवाह नहीं होती। इन्ना जअलना शयातीन औलिया अललजीन ला युमिनून, कि बेशक जो है हमने कर दिया शयातीन को दोस्त उन लोगों का जो कि ईमान नहीं लाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेक्नोलॉजी, जिनों वाली टेक्नोलॉजी की बात हुई है, तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि हमने तो उनको, उन दोनों को दोस्त बना दिया एक दूसरे का, ठीक है, काफिरों का। मारूफ मसाइल पढ़ रहे थे पेज नंबर 534 के ऊपर, लिबास के दो फायदे फरमाते हैं कि इसमें लिबास के दो फायदे बतलाए गए हैं, एक सतर पोशी, दूसरे सर्दी गर्मी से हिफाजत और आराइश बदन। और पहले फ़ायदे को मुकदम करके इस तरफ इशारा कर दिया कि इंसानी लिबास का असल मकसद सतर पोशी है। देखें इसमें जिस हमारी जो तफसीर की क्लासेस होती हैं उसमें बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ताल्लुक जो होता है ना वो सोच के साथ होता है, ठीक है ना। हम आपको फ़जाइल ज़्यादा नहीं, बस जो किताब में लिखे हैं फ़जाइल तो आपको सुना देते हैं, ठीक है ना। हम वैसे फ़ज़ाइल वगैरह के बारे में ना तो इस आजिज़ को हदीसें याद होती हैं और ना ही जो है वो इसके बारे में कोई हमारी कोई फोकस है, ठीक है ना। सारा का ज़्यादातर ताल्लुक जो होता है वो सोच के साथ होता है। तो हम क्यों कर रहे हैं आपके साथ कि आप जो है ना वो यानी सोच अपनी बनाएं और फिर आगे औलाद की सोच बनाएं, ठीक है, अपनी औलाद की सोच बनाएं। अगर आपने इस तरफ तवज्जो ही नहीं करी कि जी सोच आपने बनानी है, तो फिर एक तो ये कि ये वक्त लगाने का आपको फ़ायदा नहीं हो रहा कोई, दूसरा ये कि डरना भी चाहिए कि ये चीज़ें हमारे खिलाफ हुज्जत ना बन जाए क़यामत के दिन, ठीक है, कि सारी चीज़ें समझा रहे थे और बल्कि मैं तो ये कहूँगा मैं नहीं कोई समझा रहा था, अल्लाह ताला समझवा रहा था, है ना, अल्लाह ताला जो है उस चीज़ को पहुंचा रहा था ना अब तक। हम कोई बैठ करके कोई मुराकबे तो नहीं करते कि भाई अब क्या बोलना है, अब क्या बोलना है, नोट्स वोट्स को ही बना रहे हो तो अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें आ रही होती हैं आपके सामने फॉरवर्ड कर रहे होते हैं उनको बेसिकली, ठीक है ना। तो अब आप इसको गौर से सुने समझे नहीं तो फिर मसला ना हो जाए कहीं बहुत बड़ा, तो हम ये नहीं चाहते कि आपके साथ कोई मसला हो, तो जरा गौर से सुनने की समझने की कोशिश किया करें। जैसे पिछले जुम्मे को बात भी हुई है कि हम इन तफसीर क्लासों के अंदर अंधे बहरे और गूंगे बन करके ना बैठा करें, ठीक है? कि बिल्कुल अंधा होता है ना, जिसके सामने सब कुछ होता है लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। बहरा होता है, सारी बातें उसके सामने हो रही होती हैं लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। और गूंगा होता है कि सवाल कर सकता है, पूछ सकता है, लेकिन चूंकि गूंगा है तो इस वजह से नहीं पूछ सकता। तो अंधे बहरे गूंगे बन करके कोई क्लास के अंदर बैठेगा, हालांकि अल्लाह ताला ने उसको सलाहियत दी है, देखने की भी सलाहियत दी है, सुनने की भी सलाहियत दी है और बोलने की भी सलाहियत दी है, तो फिर ऐसे शख्स को फिर छोड़ा नहीं जाता है। ये नेमतें अल्लाह ताला की, इन नेमतों की नाकदरी करने वालों को फिर नहीं छोड़ा जाता। तो हमने, हमारे सामने बदकिस्मती कहें, हमारी हमारा कसूर है, किसका कसूर है कि लोगों को क्लास में समझा रहे होते हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, और वो वही अपनी पुरानी रविश के ऊपर रहते हैं जिस रविश पे उनकी जिंदगी पहले गुजर रही थी। कुरान पढ़ने के बाद भी वही रविश गुजर रही होती, वही रविश चल रही होती, हत्ता के पकड़ आ जाती है, हत्ता के पकड़ आ जाती है, और फिर उसके बाद पता चलता है कि अच्छा ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, तो फिर अफसोस होता है। और फिर समझाते हैं कि आपने पहले क्यों नहीं बात समझी, क्यों नहीं सुन रहे थे आप गौर से बात को, क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे थे भाई, पूछ क्यों नहीं रहे थे? अगर नहीं समझ में आ रहा था तो पूछ क्यों नहीं रहे थे? अगर कर लेते तो पकड़ ना आती, ऐसी मार ना पड़नी शुरू होती। अल्लाह ताला को कोई मजा तो नहीं आता ना हमें पकड़ करके मार मारने का। हम खुद इस किस्म की हरकतें करते हैं, खुद ऐसे इस तरीके से जो है वो बेइत्तिनाई कर रहे होते हैं, बेफिक्री कर रहे होते हैं अल्लाह ताला के कुरान की तरफ, ऐसे जो है वो हमारा रवैया होता है अल्लाह ताला कुरान की तरफ, तो बहुत बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं हम। तो इस वजह से अल्लाह ताला की तरफ से जो पकड़ आती है ना, तो वो जस्टिफाइड होती है, 100% जस्टिफाइड होती है। वो अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते हमारे ऊपर, ठीक है? वो तो बल्कि जुल्म तो क्या, अल्लाह ताला का रहम ही होता है कि पकड़ आ जाती है। वो कयामत के दिन पकड़ आएगी तो ज्यादा मसला हो जाएगा ना, फिर तो तौबा करने का भी मौका नहीं होगा। अच्छा ही है बल्कि दुनिया में पकड़ आ गई, सही है? तो इन चीजों को संजीदगी से लेना जो है ना, ये शर्त है, इसके बगैर कुछ फायदा नहीं होगा। फिर तो लिबास के दो फायदे, पहले फायदे को मुकदम करके इस तरह इशारा कर दिया कि इंसानी लिबास का असल मकसद सतर पोशी है, और यही इसका आम जानवरों से इम्तियाज है कि जानवरों का लिबास जो कुदरती तौर पर उनके बदन का जुज बना दिया गया है, उसका काम सिर्फ सर्दी गर्मी से हिफाजत या जीनत है। बस उनको वो बड़े बड़े ऐसे खूबसूरत खूबसूरत जानवर, ऐसे ऐसे कलर्स होते हैं उनके ऊपर, और खुसूसन जो परिंदे हैं, जो जो मछलियां हैं, उनकी तो खूबसूरती का कोई इंतहा नहीं होती। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज हैं, ऐसी बर्ड्स होती हैं कि उनको लोगों ने नाम रख दिया कि तो जन्नत की बर्ड्स हैं, हालांकि इसी दुनिया में रहती हैं वो, ठीक है? क्या खूबसूरती है उनके, लेकिन ये उनके बदन का जुज है। तो इसका काम सिर्फ सर्दी गर्मी से हिफाजत या जीनत है। सतर पोशी का इसमें इतना एहतमाम नहीं है, मतलब है थोड़ा सा एहतमाम लेकिन ज्यादा नहीं है। अलबत्ता आज़ाए मखसूसा की वजह उनके बदन में इस तरह रख दी गई है कि बिल्कुल खुले ना रहें, ठीक? तो वो किसी न किसी तरीके से वो कवर्ड हो जाते हैं, कहीं उन पर दुम का पर्दा है और कहीं दूसरी तरह का, ठीक है? तो हजरत आदम और हव्वा और अगवाए शैतानी का वाकया बयान करने के बाद लिबास के जिक्र करने में इस तरफ इशारा है कि इंसान के लिए नंगा होना और काबिले शर्म आज़ा का दूसरों के सामने खुलना इंतहाई जिल्लत व रुसवाई और बेहयाई की अलामत और तरह तरह के शर व फसाद का मुकदमा है, ठीक है? खुलने का यानी शर और फसाद का दरवाजा खुल जाता है इसके जरिए से, ठीक है? तो खैर, इसकी तफसील बस भी हो चुकी है थोड़ी। इंसान पर शैतान का पहला हमला उसको नंगा करके नंगा करने की सूरत में हुआ। आज भी नई शैतानी तहजीब इंसान को बरहना या नीम बरहना करने में लगी हुई है। तो फरमाते हैं कि और यही वजह है कि शैतान का सबसे पहला हमला इंसान के खिलाफ इसी राह से हुआ कि उसका लिबास उतर गया, ठीक है ना? यानी उसका लिबास उतर जाना जो है, ये उस यानी शैतान के हमले का पहला यानी पहला अंजाम था, पहला अंजाम कि लिबास उतर गया। और आज भी शैतान अपने शागिर्दों के जरिए जब इंसान को गुमराह करना चाहता है تو تہذیب و شائستگی کا نام شیطان کے شاگرد کیوں نام لیا؟ کیا شیطان خود زندہ نہیں ہے؟ ابلیس تو ابھی بھی زندہ ہے. شاگرد کون ہوتے ہیں؟ یا تو اس کے جنوں کے اندر جو شاگرد ہیں, کیونکہ ہر جگہ یہ ابلیس خود موجود نہیں ہوتا, اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ خود موجود ہو جائے, ٹھیک ہے نا, ہے یہ ایک ہی چیز اور ایک ہی جگہ پہ موجود ہو سکتا ہے. تو اس کے تربیت یافتہ دوسرے جن ہیں, اور پھر اس کے تربیت یافتہ انسان ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ خاص جو ہے وہ اپنا تعلق بنا کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ جو انسان ہیں خصوصاً مغربی تہذیب والے یوروپین, چاہے وہ آسٹریلیا جا کر کے, آسٹریلیا بالکل ایسٹ میں ہے لیکن پہنچے وہاں کہاں سے ہیں, وہ یورپ سے پہنچے ہیں سارے ادھر آسٹریلیا میں, چاہے وہ ساؤتھ افریقہ پہنچے ہوئے ہوں وہاں پہ بھی یورپ کے سارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں, اور چاہے وہ امریکہ پہنچے ہوں, ہے نا, اور ساؤتھ امریکہ پہنچے ہوں, سارے کے سارے یورپینز ہیں جو کہ پورے دنیا کے اندر پھیلے ہیں پچھلے 300-400 سال کے اندر, ٹھیک ہے. تو انہوں نے سب نے وہاں پہ جا کر کے شیطان سے خصوصی تربیت لے لے کر کے جو ہے نا انسانوں کو بے لباسی کی طرف اکسایا ہے. اور ان میں بھی جو ہے یورپینز کے اندر بھی جو ان کے بھی استاد ہیں, شیطان تو ان کا استاد ہے لیکن شیطان کے علاوہ ان کے کچھ انسان بھی ہیں جو کہ استاد ہیں. وہ کون ہیں انسانوں میں, کون ہیں ان کے استاد جو کہ ان یورپینز کو خاص طور پہ اس راستے پر لگاتے ہیں, پھر یورپینز ہمیں اس راستے پر لگاتے ہیں؟ کون ہیں جی ان کے استاد؟ شیاطین تو بالکل اوپر والے استاد ہو گئے نا, تو اس سے نیچے درجے کے استاد وہ کون ہیں جی؟ جیوز, یہودی. یہودی جو ہے نا وہ خاص طور پہ اپنے سود کے ذریعے سے کمائے ہوئے مال کو وہ اس طرف خرچ کرتے ہیں, کماتے سود کے ذریعے سے ہیں اور دوسروں کے ساتھ دھوکے کر کر کے کماتے ہیں, اور پھر اس مال کو باقاعدہ انویسٹ کرتے ہیں تاکہ جو غیر مسلم ہیں ان کو بے حیائی کے اوپر لگائیں. یہ جو فلم انڈسٹریز ہیں, ہالی ووڈ کی انڈسٹری وغیرہ, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے یہودی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. حالانکہ یہودی خود جو ہے وہ پورا لباس پہنیں گے, ان کی عورتیں بھی جو ہے نا وہ اچھا خاصا پورا لباس پہنیں گی, مرد بھی پورا لباس پہنیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اندر سے ان کو جو شیاطین کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق ہے اور ان کو دین اسلام کے ساتھ جو نفرت ہے اور حسد ہے, تو اس کی وجہ سے خود نہیں بھی کرتے یہ والا بے حیائی کا کام, یعنی اس طرح کی بے حیائی, ویسے تو بڑے اور بھی بے حیائی کے طریقے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان یہ گورے بھی جو ہے نا یہ بھی ان کے ہاتھوں بیوقوف بن رہے ہوتے ہیں اصل میں. اچھا خود یہ گورے کو تھوڑی ہیں, یہودی گوروں کی اس میں نہیں آئیں گے جو جنس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ تو ایک الگ ہی جنس ہے, بنی اسرائیل, یہ گورے نہیں ہیں, ان کی الگ قسم کی اسکن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کہا کہ گوروں کو لگاتے ہیں اس کام کے اوپر, اور پھر گورے جو ہیں وہ براؤن, ہم جیسے براؤن اور کالوں کو لگاتے ہیں اس کام کے اوپر. اچھا تو یہ جو شیطان کے شاگرد ہیں, تو اپنے شاگردوں کے ذریعے سے جب انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو تہذیب و شائستگی کا نام لے کر سب سے پہلے اس کو برہنہ یا نیم برہنہ کر کے عام سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا کر دیتا ہے, یعنی گھروں سے باہر نکال کر کے اس طرح کے کام. پھر اور شیطان نے جس کا نام ترقی رکھ دیا ہے وہ تو عورت کو شرم و حیا سے محروم کر کے منظر عام پر نیم برہنہ حالت میں لے آنے کے بغیر حاصل ہی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. انہوں نے انڈسٹریز بنائی اور انڈسٹریز کے اندر جو یہ پروڈکشن کرتے ہیں تو پروڈکشن کو پھر آگے بیچنا بھی ہوتا ہے نا, تاکہ لوگ خریدیں گے, مال آئے گا تو ان کی انڈسٹری چلے گی, ٹھیک ہے. تو اب اس کو بیچیں کیسے؟ اس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے لازمی ہے کہ ایسے طریقے استعمال کیے جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہوں اس کی طرف, ٹھیک ہے نا, لوگوں کی نگاہیں جو ہیں وہ دوسری طرف سے ہٹ کر کے ایڈورٹیزمنٹ کی طرف جائیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ان کو ایسی چیزیں لازمن لانی ہیں کہ جس کی طرف جو ہے وہ انسانوں کی نگاہیں ٹرن ہوں. تو اب اس کے اندر سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ بے لباس عورت, کم لباس والی عورت, حسین عورت, ٹھیک ہے نا.
तो अब वो औरत को जो है वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर बिलबोर्ड्स के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, अखबारों में इस्तेमाल करेंगे और इंटरनेट के ऊपर इस्तेमाल करेंगे और टीवी के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो औरत की जितनी तजलील इन्होंने करी है ना, काश के औरत को खुद समझ में आ जाए तो वो नफरत करे इनकी हर चीज के साथ, हर चीज के साथ, इनकी तहजीब से नफरत करे, इनकी जुबान से नफरत करे, इनकी लिबास से नफरत करे, इनकी फिक्र से नफरत करे। लेकिन शैतान के सामने औरत भी कैसी बेवकूफ बन जाती है कि वो नफरत करने के बजाय उल्टा इनसे मोहब्बत करना शुरू हो जाती है, उल्टा इनकी चीजों को जो है वो अफजल और इनको अपनी कामयाबी का जरिया समझना शुरू हो जाती है और इनकी जो है वो नक्काली करने को अपने लिए जो है वो अपनी और अपनी औलादों के लिए कामयाबी का सबक समझना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो औरत के साथ तो सबसे ज्यादा बुरा काम किया है। ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज सतर पोशी है। अच्छा, ये तो एक औरत के साथ एक रूहानी मसला है ना, रूहानी तौर पर उसको उसको नुकसान पहुंचता है, फिर जिस्मानी तौर पर उसको नुकसान पहुंचता है, नफसियाती तौर पर नुकसान पहुंचता है इनके पीछे भागने से। जिस्मानी तौर पर नुकसान कैसे पहुंचता है कि वैसे तो वो बड़ा एडवर्टाइजमेंट के अंदर तो वो बड़ी जो है ना वो अय्याशी वाली जिंदगी गुजारती हुई नजर आती है, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी जो होती है वो मुस्तकिल खतरे में होती है, क्योंकि हर मर्द जो होता है जो इस इंडस्ट्री के अंदर खास तौर पे मौजूद होता है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, टेलीविजन इंडस्ट्री के अंदर, वो बदतरीन मर्द होते हैं, वो बदतरीन मर्द होते हैं। तो इनके साथ जो औरतें काम करती हैं तो वो हर वक्त अपने जान के खतरे में रहती हैं, इज्जत का खतरा तो वैसे ही उनका खत्म, उसकी इज्जत तो उन्होंने पहले ही गंवा दी होती है ना, अपनी पहले अपने आप को एक्सपोज किया हुआ होता है, तो इज्जत किधर से रह गई फिर, तो इज्जत का खतरा ये आजिज बोलेगा भी नहीं, जान का खतरा होता है, क्योंकि ये जो मर्द होते हैं फिर वो जान जान भी ले लेते हैं बड़ी आसानी के साथ इन औरतों की। और फिर उसके बाद दूसरा तरीका, दूसरे तरीके से जिस तरह से नफसियाती जो नुकसान पहुंचता है औरत को, वो क्या कि भाई अपने घर वाली होती हैं, शौहर वाली होती हैं, लेकिन इस तरीके से जो एडवर्टाइजमेंट होती है, बेहयाई होती है, तो उस बेहयाई से उनके शौहर मुतासिर होते हैं, उनके शौहरों के दिलो दिमाग के ऊपर वो बेहया औरतें छा जाती हैं। तो ये जो घर की शरीफ औरत होती है ना, शादीशुदा औरत होती है, तो अब उसके शौहर की तवज्जो जो है वो इसकी तरफ से हट जाती है और उन बेहया औरतों की तरफ पड़ जाती है ना। तो ये जो बेहयाई करने वाले इंसान हैं, कितने शदीद काबिल नफरत हैं हमारे लिए, खुसूसन औरतों के लिए, लेकिन हमारी औरतों को ये बात ही समझ में नहीं आती है, इल्ला माशाल्लाह, किसी के समझ में आ जाए तो बड़ी खुशनसीब होती है वो। ठीक है, कैसे कैसे औरत को जो है वो इन्होंने नुकसान पहुंचाया। तो आगे फरमाते हैं कि ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज सतर पोशी है। जी, शैतान ने इंसान के इस कमजोर पहलू को भांप कर पहला हमला इंसान की सतर पोशी पर किया, तो शरीयत इस्लाम जो इंसान की हर सलाह व फलाह की कफील है, इसने सतर पोशी का एहतमाम इतना किया कि ईमान के बाद सबसे पहला फर्ज सतर पोशी को करार दिया, नमाज रोजा वगैरह सब इसके बाद है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स नया लिबास पहने तो उसको चाहिए कि लिबास पहनने के वक्त ये दुआ मांगे, दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फी हयाती। ठीक है, तेरा यानी शुक्र अज़ात का जिसने मुझे लिबास दिया जिसके जरिए से मैं अपने सतर का पर्दा करूँ और जीनत हासिल करूँ। ठीक है ना, तो सतर का पर्दा करने के लिए लिबास का मिलना ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक्सप्लिसिटली शुक्र अदा करने का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका सिखाया। नया लिबास बनाने के वक्त पुराने लिबास को सदका कर देने का सवाब अजीम, और फरमाया कि जो शख्स नया लिबास पहनने के बाद पुराने लिबास को गुराबा व मसाकीन पर सदका कर दे तो वो अपनी मौत और हयात के हर हाल में अल्लाह ताला की जिम्मेदारी और पनाह में आ गया। ठीक है, इस हदीस में भी इंसान को लिबास पहनने के वक्त इन्हीं दोनों मसलहतों को याद दिलाया गया है कि जिसके लिए
اللہ تعالیٰ نے انسانی لباس پیدا فرمایا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ستر پوشی اور زینت حاصل کرنا. ستر پوشی ابتدائے آفرینش سے انسان کا فطری عمل ہے. ارتقاء کا جدید فلسفہ، ارتقاء کا جدید فلسفہ باطل ہے. فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے واقعے اور قرآن کریم کے اس ارشاد سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ستر پوشی اور لباس انسان کی فطری خواہش اور پیدائشی ضرورت ہے جو اول دن سے اس کے ساتھ ہے. اور آج کل کے بعض فلاسفروں کا یہ قول سراسر غلط اور بے اصل ہے کہ انسان اول ننگا پھرا کرتا تھا، پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا. اللہ تعالیٰ کا عجیب کرنا ہوا کہ جمعے کے دن اسادس نے بھی مجلس کے اندر بیان کرنا ہوتا ہے، تو اور ویسے بھی جہاں پہ جمعے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کا ٹائم جو ہے اس سے وہ تھوڑا کانفلکٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو تیاری وغیرہ کی وجہ سے ہمارے حضرت کا جو بیان ہوتا ہے جمعے کی وہاں پر ان کی مسجد کے اندر مہد الفقیر، تو وہ بیان پھر لائیو سننے کا اکثر موقع بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، تو پھر بعد میں کوشش کرتے ہیں کہ ریکارڈنگ جو ہے وہ سن لیں. تو عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف قدرتی معاملہ یہ ہوا کہ ساجس نے بھی یہی ٹاپک، مطلب میرے دو تین ٹاپکس مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بیان کرنا ہے، کئی کتابیں بھی دیکھیں کچھ نہیں بن رہا تھا، تو پھر بس اسی طرف جو ہے نا وہ دل ٹھک گیا کہ بس اسی کو پڑھ کے آپ کو، اور طبیعت بھی ایسے اس دن ٹھیک نہیں تھی، بس اسی کو پڑھ کے آپ کو تھوڑا ایکسپلین کر دیا جائے. پھر جب ایک دن کے بعد حضرت کا ریکارڈڈ بیان سنا تو حضرت بھی اسی ٹاپک پہ بات فرما رہے تھے اسی جمعے کے دن، ٹھیک ہے، یہی ارتقائی جو ڈارونز تھیوری آف ایولیوشن اور یہ سب کچھ، ٹھیک ہے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نسبت عطا فرما دی بڑوں کے ساتھ. تو جی تو فرماتے ہیں کہ پھر ارتقائی منزلیں طے کرنے کے بعد اس نے لباس ایجاد کیا. تو لباس کی ایک تیسری قسم، ستر پوشی اور راحت و زینت کے لیے دو قسم کے لباسوں کا ذکر فرمانے کے بعد قرآن کریم نے ایک تیسرے لباس کا ذکر اس طرح فرمایا، ولباس التقوی ذلک خیر. تو بعض قراتوں میں فتحہ یعنی زبر کے ساتھ لباس التقوی پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، بعض قراتوں، لیکن جو راجح قرات ہے تو اس کے اندر لباس التقوی ہے جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں. تو لباس التقوی یہ بھی ایک، یعنی نبی علیہ السلام نے ایسے بھی پڑھ کر کے صحابہ کو یہ آیت سنائی، تو کچھ صحابہ نے اس کو پک کر لیا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے مختلف قراتیں ہوتی ہیں قرآن کی. تو انزلنا کے تحت میں داخل ہو کر معنی یہ ہوئے کہ یعنی اگر لباس التقوی پڑھیں گے تو پھر انزلنا کے تحت، یعنی اس کا پھر یہ مفعول بھی بن جائے گا نا، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقوی کا اتارا ہے، یعنی انزلنا لباس التقوی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اس کا عطف مل جائے گا. تو مشہور قرآت کی روح سے معنی یہ ہے کہ یہ دو لباس تو سب جانتے ہیں، ایک تیسرا لباس تقوی کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس والی قرآت کو لیا جائے تو کیا مطلب بنے گا کہ ہم نے ایک تیسرا لباس تقوی کا اتارا ہے، انزلنا لباس التقوی، ٹھیک ہے. تو دونوں قرآتوں کے حساب سے مفہوم تقریباً ایک ہی بنتا ہے، اور وہ سب لباسوں سے زیادہ بہتر ہے یہ لباس التقوی. تو لباس تقویٰ سے مراد حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر کے مطابق عمل صالح اور خوف خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے لباس تقویٰ نازل فرمایا اس قرآت کے مطابق جو شاذ قرآت ہے اس کے مطابق. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو عمل صالح ہے اور خوف خدا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی توفیق سے انسان جو ہے وہ مزید اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے. عمل صالح اور خوف خدا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انزلنا اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں، یہ نزول ہوتا ہے اوپر سے، لباس التقوی یعنی تقوی کی توفیق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، ٹھیک ہے. تو توفیق جو ہے وہ پھر دعا سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور دوسری چیز جس سے توفیق ملتی ہے وہ کیا کہ جب ہمیں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے اور ہم جو ہیں وہ اس حکم کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ کر کے اس حکم کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے پھر ہمیں اعمال کی توفیق ملتی ہے، مزید اعمال کی توفیق ملتی ہے. حکم پر جب ہم عمل کرتے ہیں، نبی کے حکم کے اوپر، مشائخ کے حکم کے اوپر جب ہم عمل کرتے ہیں،
तो फिर बगैर हुक्म के भी हमें नए आमाल करने की तौफीक मिलती है, और उसके बाद उससे बढ़कर के किस चीज की तौफीक मिलती है, अमल के बाद किस चीज की तौफीक मिलती है, किस चीज का जिक्र रहता है, खौफ खुदा का ना, राइट। खौफ खुदा क्या चीज है? खौफ खुदा कोई अमल नहीं है, खौफ खुदा क्या है जी, क्या है ये खौफ खुदा? ये अमल का नाम है खौफ खुदा। अमल साले तो हो चुका ना पहले, अमल साले की तौफीक मिल गई, अताअत के नतीजे में अमल सालेह की तौफीक मिली, और उससे भी बढ़ करके एक चीज की तौफीक मिली जिसको खौफ खुदा कहते हैं। सवाल ये आज ये कर रहा है कि खौफ खुदा क्या चीज है, क्या ये अमल है या क्या है जी? कैफियत, ये कैफियत का नाम है, ये फीलिंग का नाम है। तो दिल के अंदर ये फीलिंग आ जाना, राइट, ये अमल से भी ज्यादा बढ़ करके चीज है, बल्कि ये तो कामयाबी की गारंटी है। जिसके अंदर खशियत आ गई है ना, वो तो कामयाब हो गया, उसको तो अल्लाह की रजा मिल गई है ना। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, कि जिसको अल्लाह की खशियत मिल गई उसको अल्लाह की रजा मिल गई, और जिसको अल्लाह की रजा मिल गई वो कामयाब हो गया, पक्का कामयाब हो गया, ठीक है। लेकिन ये शुरू कहां से होती है? चिकन एंड एग प्रॉब्लम वाली बात शुरू किधर से होगा भाई? एग पहले आएगा कि चिकन पहले आएगी? पहले खशियत पैदा होगी, फिर उसके बाद आपको अमल की तौफीक मिलेगी, या अमल की तौफीक पहले मिलेगी फिर खशियत पैदा होगी, या पहले अतात आएगी फिर अमल की तौफीक मिलेगी, या पहले अमल की तौफीक फिर, यानी क्या है ये, है ना, क्या चीज पहले आ रही है? सबसे पहले हुक्म मानना, अतात, राइट। खौफ खुदा पहले नहीं आता, अमल की तौफीक पहले नहीं आती, अताअत पहले आती है, बाय यानी तौअन औ करहन, दिल चाह रहा हो अताअत करने का फिर भी अताअत करनी है, दिल ना चाह रहा हो अताअत करने का फिर भी अताअत करनी है। जो ऐसे करता है ना फिर उसको अमल की तौफीक मिलती है, और उसके बाद उसको खशियत की कैफियत भी मिल जाती है, ठीक है। तो अनजलना लिबास तक्वा, ऊपर से जो ये सब सारी तौफीकें आ रही हैं ना, ये किसको मिल रही हैं तौफीकें? लिबास तक्वा की तौफीक किसको मिल रही है? हुक्म मानने वाले को मिल रही है। और जो हुक्म ही नहीं मानता ना, 420 ही करता रहता है हर वक्त, झूठ बोलता रहता है हर वक्त, अपनी चलाता रहता है हर वक्त, और कहता है कि हाँ सुन तो लिया है लेकिन करूँगा मैं वही जो मेरी मर्जी होगी, तो वो इन सारी चीज़ों से महरूम रहता है। मतलब ये है कि जिस तरह ज़ाहरी लिबास इंसान के काबिल शर्म आज़ा के लिए पर्दा और सर्दी गर्मी से बचने और जीनत हासिल करने का ज़रिया होता है, इसी तरह एक मानवी लिबास अमल सालेह और खौफ खुदा ताला का है, जो इंसान के इखलाकी उलूब और कमज़ोरियों का पर्दा है, ठीक है। अंदर इखलाकी उलूब चल भी रहे होते हैं ना, तो भी अमल सालेह जो होता है वो उनको ढांप देता है, ठीक है, और इंसान जो है वो फिर जलील होने से बच जाता है, दुनिया के सामने भी और अल्लाह के सामने भी, फिर अल्लाह ताला उसको मुआवजा नहीं फरमाते उसका। और कमज़ोरियों के अंदर इखलाकी उयूब भी आ जाते हैं, और कुछ तबीयत कमज़ोरियाँ भी होती हैं कि हर बंदा भाई अमल नहीं कर पा रहा, हर बंदे के अंदर इतना हौसला नहीं है, हर बंदे के अंदर इतनी स्टेमिना नहीं है कि वो खूब लग करके इबादत कर सके, ठीक है ना। तो वो कमज़ोरियाँ होती हैं, हर एक की तभी कमज़ोरियाँ होती हैं, ठीक है। तो वो कमज़ोरियाँ भी कवर हो जाती हैं, है ना, वो मजबूरियाँ भी, बहुत सारी औरतें होती हैं वो मजबूर होती हैं, उनके ऊपर ससुराल का बोझ, उनके ऊपर बच्चों का बोझ, उनके ऊपर हालात का बोझ, बेचारी नहीं अमल कर पा रही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो तकवा इख्तियार करें ना, तो वो फिर इन आमाल की कमज़ोरियों को फिर कवर अप कर लेता है, ठीक ना, वो फिर इनको कॉम्पनसेट कर देता है, ठीक है ना। अब बहुत सारे हैं आप में से, जानते हैं हम, कि जिनके हालात ऐसे हैं कि जो नहीं कर सकते बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, किसी का शौहर साथ नहीं दे रहा, किसी के बच्चों के साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, है ना, बच्चों की तबीयत खराब रहती है, बच्चों की तादाद ज़्यादा है, या ससुराल की बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, तो अमल नहीं कर पा रही होती, ठीक है ना। लेकिन अगर वो तकवा की तरफ कुछ अपनी अपनी फिक्र कुछ बना लेना खाली, और कुछ कहीं भी बातों के ऊपर बहुत थोड़ा सा, मतलब आमाल करने की जरूरत नहीं होती, फिक्र बनाने की जरूरत होती है, जिसके लिए इंसान को वक्त नहीं चाहिए होता, वक्त नहीं चाहिए होता फिक्र बनाने के लिए। फिक्र तो आप हांडी चूल्हा करते हुए बना सकती हैं, बस पे अटेंशन करें, फिक्र बन जाएगी। हांडी हांडी पे आप मसाला डाल रही हैं, उस दौरान आपकी फिक्र बन सकती है, अगर आप अटेंशन जरा से उस तरफ लगाएं, जरा से अपने दिमाग को उस तरफ लगाएं, गौर कर लें कुछ बातों के ऊपर, तो फिक्र बन जाएगी। फिक्र बन जाएगी ना तो सब अल्लाह ताला कर देंगे सारा काम मुकम्मल, अल्लाह ताला कर देंगे सारी चीजों की कमी को पूरा, लेकिन नहीं करती, गौर ही नहीं करती, सोचती ही नहीं है, थोड़ा सा राबता डायरेक्ट नहीं कर सकती, इनडायरेक्टली राबता कर ले, नहीं करती बिल्कुल भी, ठीक है ना। 10-10 साल गुजर जाते हैं, औलादें बढ़, छोटी छोटी औलादें थी, बड़ी हो जाती हैं, और फिर वो बुराई के रास्ते के ऊपर चल पड़ती हैं, फिर उसके बाद जब मार पड़ती है तो फिर उसके बाद रोती हैं, भाई पहले थोड़ी सी फिक्र कर लेती है ना तो नौबत यहां तक नहीं आती, राइट। नहीं नहीं मेरे हालात ऐसे हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। अल्लाह की बंदी, हालात का कोई मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह ताला ही तो हालात बनाते हैं, अल्लाह ताला इन हालात को बेहतर भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लें, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो ये जो बहाने हैं ना, हालात वाले जो बहाने होते हैं ना, ये नहीं चलते हैं, ये हालात वाले बहाने, ठीक है ना। वही बात आ जाती है कि जो आसिया से ज्यादा बुरे हालात किसी के नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो फिरौन के महल में रह करके उसकी फिक्र थी ना, उसने कौन सी तहज्जुदें, पता नहीं क्या तहज्जुदें पढ़ी थी, नमाजें पढ़ी थी, हमें पता भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। लेकिन वो अमाल की तो जिक्र ही कोई नहीं है ना, कि आसिया ने ये अमाल किए थे, कोई अमाल का तो कोई जिक्र ही नहीं आता ना उसके अंदर, तो आसिया की तो फिक्र थी ना, ठीक है ना। तो फिक्र से सारे काम हो जाते हैं, लेकिन हम फिक्र ही नहीं करना चाहते, अमाल के बहाने बनाते हैं कि जी अमाल कैसे करूँ जी, टाइम ही नहीं है, और शौहर साथ नहीं देता जी, और ससुराल वाले नहीं करने देते जी, और ये नहीं होता जी, वो नहीं होता जी। मतलब ये है कि जिस तरह ज़ाहिरी लिबास इंसान के काबिल शर्म आज़ा के लिए पर्दा और सर्दी गर्मी से बचने और जीनत हासिल करने का जरिया होता है, इसी तरह एक मानवी लिबास अमले साले और खौफ खुदा का है। तरह ये पढ़ चुके हैं, इसमें इस तरफ भी इशारा है कि एक बदकार आदमी जिसमें खौफ खुदा ना हो और वो अमले साले का पाबंद ना हो, वो कितने ही पर्दों में छुपे, ठीक है ना। अब ये फिर वही बेवकूफ़ी वाली कोई बात ना करे कि जी मैं तो हालात की वजह से अमले साले नहीं कर पाती, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो बात हो रही है जो जिसके हालात साजगार हो, अमल साले कर सकता हो, लेकिन वो उसको छोड़ करके बुरा अमल करे। ससुराल का प्रेशर है, ठीक है ना, तो कुरान की क्लास नहीं ले सकती, सही है, लेकिन टीवी जरूर देखती है, ड्रामे जरूर देखती है, चैटिंग जरूर करती है, गप्पे जरूर मारती है, ठीक है ना। तो अब इस औरत के लिए तो कोई एक्सक्यूज नहीं है ना फिर। अब भाई कुरान की क्लास आप बेशक नहीं ले सकती, ना लें, ठीक है, लेकिन फिर आप टीवी के सामने भी तो वक्त नहीं गुजारे ना, हराम भी तो ना करें ना, गुनाह कबीरा भी तो ना करें ना। नहीं, वो तो करना है जी, ठीक है। तो अब ये बहाने जो बनाते हैं ना, तो उनकी बात हो रही है कि ऐसे शख्स का जो है ना, फिर वो कितने ही पर्दों में छुपे मगर अंजाम कार रुसवा और जलील होकर के रहना। अब वो जलील होगी ये औरत, ये अपने शौहर के हाथों भी जलील होगी, ये ससुराल के हाथों भी जलील होगी, ये अपनी औलाद के हाथों भी जलील होगी, ठीक। जैसा कि इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने बरिवायत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु नकल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, कि जो शख्स कोई भी अमल लोगों की नजरों से छुपा कर करता है, अल्लाह ताला उसको इस अमल की चादर उढ़ा कर ऐलान कर देते हैं। नेक अमल हो तो नेकी का और बुरा अमल हो तो बुराई का। चादर उढ़ाने से मतलब ये है कि जिस तरह बदन पर ओढ़ी हुई चादर सबके सामने होती है, ठीक है ना, चादर का यानी घर से बाहर निकलते हैं तो चादर का बुरका होता है औरतों के लिए भी, और मर्दों के ऊपर भी जो भी चीज़ होती है चादर की शक्ल की, तो वो तो आप दूसरों से नहीं छुपा सकते ना, अपने बुरके को तो नहीं छुपा सकते लोगों से। तो इंसान का अमल कितना ही पोशीदा हो, उसके समरात व आसार उसके चेहरे और बदन पर अल्लाह ताला जाहिर कर देते हैं। और इस इरशाद की सनद में आदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी, वरीशन व लिबास तक्वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, अल्लाह ताला की निशानियाँ होती हैं। इस तरीके से अल्लाह ताला एक्सपोज कर देते हैं अच्छाई को भी और बुराई को भी। ज़ाहिरी लिबास का भी असल मकसद तक्वा हासिल करना है। लिबास तक्वा के लफ्ज़ से इस तरफ भी इशारा पाया जाता है कि ज़ाहिरी लिबास के ज़रिए सतर पोशी और जीनत व तजम्मुल सब का असल मकसद तक्वा और खौफ खुदा ताला है, जिसका ज़ुहूर इसके लिबास में भी इस तरह होना चाहिए कि इसमें पूरी सतर पोशी हो, कि काबिल शर्म आज़ा का पूरा पर्दा हो, वो नंगे भी ना रहें और लिबास बदन पर ऐसा चुस्त भी ना हो जिसमें ये आज़ा मिसल नंगे के नज़र आए। ठीक है, तो चुस्त लिबास भी जो है ना, ये भी हमारे यानी दीन के अंदर और इवन हमारे ट्रेडिशन के अंदर भी, कल्चर भी अगर आप देख लें जिसको मशरकी कल्चर कहा जाता है या अरबी कल्चर कहा जाता है, तो तंग लिबास की भी उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। तो नीज इस लिबास में फख्र गुरूर का अंदाज भी ना हो बल्कि तवाज़ो के आसार हों, इसराफ़ बेजा भी ना हो, ज़रूरत के मुवाफिक कपड़ा इस्तेमाल किया जाए, औरतों के लिए मर्दाना और मर्दों के लिए जनाना लिबास भी ना हो जो अल्लाह ताला के नज़दीक मकबूज व मकरूह है। लिबास में किसी दूसरी किस्म की नक्काली भी ना हो जो अपनी कौम व मिल्लत से गद्दारी और एराज की अलामत है। ये कौम व मिल्लत से गद्दारी वाली कैफियत जो है ना, ये ज़रा उसके लिए गैरत चाहिए होती है, तो अल्लाह ताला में सबको मर्दों औरतों सबको गैरत अता फरमाए। इसके साथ ही इखलाक व आमाल की दुरुस्ती भी हो जो लिबास का असल मकसद है, यानी इन सब के साथ इखलाक व आमाल की दुरुस्ती, ठीक है, जिसको कि तक्वा कहा जाता है। और आखिर आयत में इरशाद फरमाया, ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून, यानी इंसान को लिबास की ये तीनों किस्में अता फरमाना अल्लाह जल्ला शानहु की आयात कुदरत में से हैं ताकि लोग इससे सबक हासिल करें। अच्छा, अब जो है वो इन आयात का आखिरी हिस्सा शैतान के बारे में जो था कि दूसरी आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया था, दोबारा पढ़ लेते हैं कि या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुम शैतान कमा अखरज अबवैकुम। ठीक है, तो दूसरी आयत में फिर औलाद आदम को खिताब करके तंबीह फरमाई गई है कि अपने हर हाल और हर काम में मकर शैतानी से बचते रहो, ऐसा ना हो कि वो तुमको फिर किसी फितने में मुब्तला कर दे। हर हाल में दुनियावी हालात हों या दीनी हालात हों। ठीक है, यानी ये नहीं कि जी दुनियावी हालात में तो शैतान गुमराह कर सकता है, दीनी काम के अंदर शैतान गुमराह नहीं कर सकता, या दीनी में कर सकता है दुनियावी में नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो ईमान वाले हैं ना, जिनको के कुरान से एक ताल्लुक होता है, जिनका के जिनकी के चीज़ों की फिक्र होती है, होनी चाहिए कम अज़ कम, तो वो हर हाल में शैतान के बहकावों से डरते रहें। जो लोग बिल्कुल ही आउट होते हैं, जो कम कहते हैं ना आउट हैं, ये तो बिल्कुल है ना, नाच गाना पब्स और है शराब हलाल ये यानी इन सब चीज़ों में पड़े हुए, तो उन्होंने को थोड़ी शैतान की फिक्र करनी है, वो तो बिल्कुल ही गाफिल हो चुके हैं ना। तो यहाँ पर बात जो होती है हम जैसे लोगों के लिए हो रही है कि हम अपने आमाल करते हुए अपने मामलात करते हुए दुनियावी हो या दीनी हो, हम ये मत समझें कि जी बस मैं कर रहा हूँ तो बस अब सब कुछ ठीक है और बस अब कबूल भी होना है और फिर मौत तक भी ये आमाल पहुँचने हैं और फिर जो है वो मुझे इनका सब कुछ मिलना भी है। भाई किसी वक्त भी शैतान के जो चाल है ना वो चल सकती हैं, तो इस वजह से मकर शैतानी से बचते रहना ये हमारे करने का एक एसेंशियल काम है। जिस तरह से नमाज पढ़ना है ना इबादत करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह से बचना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि वो तुमको फिर किसी फितने में मुब्तला कर दे जैसा तुम्हारे माँ बाप हजरत आदम व हव्वा को उसने जन्नत से निकलवाया और उनका लिबास उतार कर उनके सतर खोलने का सबब बना। वो तुम्हारा कदीम दुश्मन है, इसकी दुश्मनी का हमेशा हर वक्त ख्याल रखो। कदीम यहाँ पर जो लफ्ज़ कदीम इस्तेमाल हुआ ये पुराने के लफ्ज में पुराने के मानी में इस्तेमाल हुआ, यानी जब से तुम बने हो ना ये उस वक्त से तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, لیکن ایک استعمال ہوتا ہے اس لفظ قدیم کا, پتہ نہیں انہوں نے سوال کیا تھا کلاس میں کرنا چاہیے اس طرح کا سوال, لیکن کلاس ختم ہونے کے بعد نا واٹس ایپ کے اوپر اس طرح کے سوال بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا نا کہ جو کلاس کے اندر کرنے کی بات تھی اب وہ الگ سے اب آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دے کر کے واٹس ایپ کے اوپر اس کا جواب دیا جائے. کوشش کیا کریں اگر کلاس میں ہے تو کلاس میں سوال کر لیا جائے, یا پھر یہ کہ اگلی کلاس میں اس کو یاد رکھا جائے, ٹھیک ہے نا. تو وہ قدیم کے بارے میں کہ یہ قدیم سمجھ میں نہیں آیا, تو اس کلاس کے اندر جو قدیم کا لفظ استعمال ہو رہا تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ قدیم ہے, یا اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے. تو اس قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ سے, ٹھیک ہے نا, فور سنس ایور, ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ. یعنی قدیم اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ کبھی اس کی ابتدا نہ ہو, کہ وہ ابتدا ہوا. ابتدا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے نہیں تھا پھر اس کی ابتدا ہوئی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے کو پھر قدیم نہیں کہتے, ایسی چیز کو قدیم نہیں کہتے کہ جس کی کوئی بگننگ پوائنٹ ہو, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو قدیم کا لفظ ہے وہ عقیدے کے کانٹیکسٹ میں قدیم کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہم اردو زبان میں لفظ قدیم جو ہے نا وہ اس کانٹیکسٹ میں استعمال نہیں کرتے, عقیدے کے کانٹیکسٹ میں استعمال نہیں کرتے. یہاں پر جو لفظ قدیم استعمال ہو رہا ہے یہ اردو کے وزن پہ استعمال ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پرانا. جیسے یہ جی بڑی قدیم عمارت ہے, یہ جی بڑا قدیم تہذیب ہے, ٹھیک ہے, یہ قدیم زبان ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت پرانی بس, ٹھیک ہے. لیکن عقیدے کے کانٹیکسٹ میں جب قدیم استعمال ہوتا ہے تو مراد ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے ہے, ٹھیک ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قدیم ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہے, ٹھیک ہے. اچھا کیا فرمایا, انہوں نے پرائیویٹلی کچھ لکھا ہے, سوال لکھا ہے غالباً, مکر شیطان سے بچنے کا اول درجہ نسبت کا مضبوط کرنے کی فکر, اور اس کے بعد جب بھی کوئی ایسا خیال یا مال ہو یا حال ہو جائے, اچھا ایسا خیال یا حال ہو جائے تو توبہ کرنا ہے. شیطان سے بچنے کے لیے سب سے پہلا درجہ, اول درجہ نسبت کا مضبوط کرنا. ہاں شیطان سے بچنے کے لیے, شیطان سے بچنے کے لیے بھی بس وہی کرنا ہوتا ہے جو کہ بیماری سے بچنے کے لیے کرنا ہوتا ہے. کیا کیا کرنا ہوتا ہے بیماری سے بچنے کے لیے, تو نہیں اس کا جواب آپ بتا دیں, باقی ہم اس کو اس میں کر دیں گے. بیماری سے بچنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں بس, دو, نمبر ون اینڈ نمبر ٹو. کیا, واٹ از نمبر ون, واٹ از نمبر ٹو, ٹھیک ہے. چلیں تو وہ آپ بتائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے سوال کا جواب بھی. تو اس میں لفظ قبیل کے معنی جماعت اور جتھے کے, اچھا کہاں پڑھے تھے, بڑے آپ نے اچھے اچھے سوال کرنے شروع کر دیے لوگوں نے ایک دم سے. اچھا انہوں نے جواب دیا ساجس کے سوال کا کہ ڈاکٹر سے رجوع اور دوا اور پرہیز یہ بیماری سے بچنے کے لیے کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر سے رجوع, دوا کا استعمال, اللہ رحم کرے آپ لوگوں کے اوپر, دوا اور دعا, آپ پر بھی اللہ رحم کرے. ڈاکٹر کے پاس جانا اینڈ میڈیسن, اچھا احتیاط اور علاج, پریونشن اینڈ کیور, سب پر اللہ تعالیٰ رحم کرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بلند درجات پر فرمائے, ٹھیک ہے نا. دعا, دعا پہلے پھر اس کے بعد دوا, ٹھیک ہے, دعا نمبر ون, دوا نمبر ٹو, ٹھیک ہے. تو یہ دو درجے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے شیطان سے بچنے کے لیے بھی نمبر ون دعا, نمبر ٹو دوا. اب دوا کون سی ہے, ٹائنول کھانی ہے, پیناڈول کھانی ہے, اینٹی بایوٹک کھانی ہے, فلانی کھانی ہے, تو وہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا, ठीक है, तो दूसरा दर्जा जो है दवा के यानी दुआ के बाद जो है वो ये कि दवा करनी है, दवा के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो डॉक्टर के साथ ताल्लुक बनाएंगे तो फिर दवा अच्छी मिल जाएगी और दवा पे अच्छे से फिर आप अमल कर सकेंगे, यानी दवा अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो डॉक्टर कौन होता है शैतान से बचाने के लिए? शेख, ठीक है। तो दुआ डायरेक्ट अल्लाह से होती है और दवा इसके लिए शेख, तो शेख के साथ फिर नस्बत, फिर वो आपकी बात आ जाती है कि हाँ नस्बत मजबूत होनी चाहिए और ये सारी वे तफसीलात हैं शेख शेख के साथ जो मामलात होते हैं इंसान के, ठीक है। अच्छा, दूसरा इन्होंने काफ़ी अच्छा सवाल किया था, वो ऊपर ना निकल जाए ज़्यादा, हाँ असबाब इख्तियार करना, वही दवा जो होती है वो असबाब, और डॉक्टर भी जो होता है ना वो भी असबाब ही में से होता है। अच्छा, हजरत आद इन्होंने लिखा था प्राइवेटली कि हजरत आदम व हव्वा के समझ नहीं आया कि शैतान है जो ऐसा करने के लिए कह रहा है, यही मसला तो हमारे साथ है कि समझ नहीं आता कि ये शैतान है ना, यानी हमारे भी समझ में नहीं आता कि ये शैतान है, तो इसका क्या हल है? तो देखें, आदम और हव्वा का जो मामला था ना वो ये था कि उनको अल्लाह ताला ने ना इल्मुल अशिया अता फरमा दिया था कि ये है, ये है, ये है, ठीक है, इल्मुल अशिया, ठीक है ना, अल्लमल आदमा अशिया, तो वो इल्म इनके पास था कि ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन इनको अल्लाह ताला ने ना यानी इनके साथ जो है वो या तो ये भी कह सकते हैं कि मुस्तकिल कोई वो नहीं था, इल्म का एक ज़रिया इनके साथ नहीं लगा हुआ था, ठीक है, कि जिसके अंदर ये हर चीज़ को जा कर के चेक करते रहें, ठीक है। तो इनके पास जब शैतान आया ना और उसने धोखा दिया, इनको झूठ बोला और धोखा दिया, तो अब ये जो था ना यानी उस ज़माने का वाकया है कि जिस ज़माने में कि इनके यानी ये नबियों वाला सिस्टम नहीं स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है, उस वक्त ज़ाहिर इन्होंने पहला नबी बनना था, इन्होंने पहला इंसान बनना था, तो ये वाला सिस्टम उस वक्त स्टार्ट ही नहीं हुआ था। तो इस वजह से धोखे से बचने के लिए जो है ना वो इनके पास असबाब नहीं थे, बज़ाहिर उस वक्त कोई असबाब नहीं थे, मुसब्बिबुल असबाब ही था, ठीक है ना, अल्लाह ताला ही था ना बस उस वक्त इनके ऊपर, सही है, बाकी कोई असबाब तो थे नहीं इनके लिए कि जिनसे जाकर एक चेक करते कि हाँ भाई ये जो बोल रहा है तो ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसा जिब्राइल अलैहिस्सलाम वाला सिलसिला भी उस वक्त तक हमें कहीं उसकी वो नहीं मिलती कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इनके साथ आते रहते थे, इनसे बात करते रहते थे और ये उनसे हैं, कोई यानी असबाब का सिस्टम नहीं नज़र आता। तो इस वजह से ना इनका जो मामला था वो क्या है, उसको तकवीनी मामला कहा जाता है, ठीक है, इनके ऊपर सारा इनके ऊपर ब्लेम नहीं डाला जाता, ठीक है ना, कि जी उनका कसूर है, क्यों किया उन्होंने ऐसा, उनको नहीं करना चाहिए था ऐसा, ये हम नहीं कर सकते उनके बारे में, आदम अलैहिस्सलाम के बारे में, ठीक है। तो उनका एक स्पेशल मामला था, भूल हो गई थी, उनके अंदर नाफरमानी का अज़म नहीं था, तुगयानी नहीं थी, और उनके साथ ऐसा कोई असबाब का मामला भी नहीं था कि भाई क्यों नहीं असबाब इख्तियार किया उन्होंने, है ना। तो अब बाकी ये कि अल्लाह ताला से मांगा नहीं उन्होंने उस वक्त, दुआ नहीं करी उस वक्त, तो भाई वो अल्लाह ताला ने तकवीनी मामला, ऐसा ही तो होता है कि अल्लाह ताला भुलवा देते हैं इंसान को, ठीक है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम करना था, ऐसे ही हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को हम ऐसे उनके लिए हम जस्टिफिकेशंस बनाएंगे आदम और हव्वा के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर ये तुगयानी, ये सरकशी वगैरह नहीं थी, सही है, तो उनके लिए हम ये जस्टिफिकेशंस बनाएंगे, लेकिन हम अपने लिए ये जस्टिफिकेशंस नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे लिए जो है ना तो हमारे लिए अल्लाह ताला ने असबाब का निज़ाम बनाया हुआ है, ये सेटअप हमारे लिए रखा हुआ है, तो इस मामले में हम और वो मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो अब अगर हम जानबूझ करके असबाब इख्तियार नहीं करते हैं ना, तब हमारे ऊपर ब्लेम आएगा, हम ये नहीं कह सकते कि जो उनको भी तो उनको भी समझ में नहीं आया तो हमें भी भाई आपके पास असबाब हैं, आप क्यों नहीं उन असबाब को इख्तियार करते, ठीक है। तो और फिर जो रिमाइंडर्स हमें बार बार मिल रहे होते हैं कि जी दुआ दुआ दुआ, सबसे पहले दुआ, सबसे पहले दुआ, तो वो रिमाइंडर्स का सिस्टम भी अल्लाह आदम और हव्वा के साथ कोई रिमाइंडर्स का भी सिस्टम नहीं था, कि उनकी जो है वो तफसीर की क्लासेस होती थी, उनकी जूम के ऊपर क्लासेस होती थी, उनको व्हाट्सएप के ऊपर समझाया जाता था, उनको जो है वो दर्स के अंदर बुलाया जाता था, कोई ऐसी चीज़ थी उनके? उनको तो खाने पीने में अल्लाह ताला ने खुद लगाया था, खाओ पियो मजे करो, है ना, बस इधर मत जाना, बस ये था ना उनका सारा का सारा मामला। हमारा तो ये सारा सारा मामला नहीं है ना, ठीक है? तो हमारे साथ तो फिर पूरा का पूरा एक इल्म का सिस्टम अल्लाह ताला ने हमें दे करके भेजा है ना, और फिर असबाब इख्तियार करने के सुन्नतें हमें सिखाई हैं, समझाई हैं और ये सब। तो इस वजह से हमारा मामला यही है कि हम मांगें अल्लाह ताला से और असबाब को इख्तियार करें और बस। मैंने किसी से सुना था कि शैतान पहले आदम अलैहिस्सलाम के पास गया, वो नहीं माने, फिर अम्मा हव्वा के पास गया, फिर अम्मा हव्वा को बहकाने में कामयाब हो गया, क्या ये सही है? जी सुना तो हमने भी है, लेकिन उसकी कोई सनद वगैरह का ऐसा जिसके पास इतना इल्म नहीं है, ठीक है, कि ये कितनी मुस्तनद बात है कि वो उसने पहले अम्मा हव्वा को कन्विंस कर लिया, फिर उसके बाद यानी अम्मा हव्वा ने जो है ना फिर वो गोया के आदम अलैहिस्सलाम को कन्विंस करने में गोया के उसकी मदद करी, ना दानिस्तगी में लेकिन मदद करी, ठीक है। तो इसकी सनद जो है वो साजिश के पास नहीं है कि ये कितनी ऑथेंटिक और कितनी मुस्तनद बात है। इस वजह से तफसीलात बहुत आती हैं इसकी, वही लोगों पर पहली बात हुई थी कि वो शैतान पहुंचा कैसे वहां पर, तो वो जो है वो मोर के पैरों में लपट करके पहुंचा, ये और भी बहुत सारी बातें इस तरह की हैं ना। खैर आज की क्लास में बस कोशिश करते हैं ये इतना सा पढ़ लें, तो बाकी अगली क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। तो फरमाते हैं कि आखिर आयत में फरमाया कि इन्नहु यराकुम हुवा वकबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून। इसमें लफ्ज़ कबील के मानी जमात और जत्थे के हैं, जो जमात एक खानदान की शरीक हो उसको कबीला कहते हैं और आम जमातों को कबील कहा जाता है। यानी कबीला एक फैमिली बहुत बड़ी जब फैमिली हो जाती है तो फिर उसको कबीला कहते हैं, और अगर आम जमातों को कबील कहा जाता है यानी एक ही पर्पस जिनका हो तो उनका कहते हैं, तो एक ही कबील के लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई जमातें जो है ना वो जो एक वन पर्पस के साथ रहती हैं तो उन सबको कबील कहा जाता है। मतलब ये है कि शैतान तुम्हारा ऐसा दुश्मन है कि वो और उसके साथ ही तो तुमको देखते हैं, तुम उनको नहीं देखते, इसलिए उनका मकरो फरेब तुम पर चल जाने के ज्यादा इम्कानात हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर कबीला तो एक खानदान ना, इसका मतलब कि शैतान की जो औलाद है वो तो उसके हो गए कबीला, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने कबील का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो कबील का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ उसकी औलादे नहीं, यानी सलबी औलादे जिनको बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, सिर्फ वो नहीं बल्कि उसके साथ जो यानी फिक्री तौर पर उससे एग्री करते हैं, फिक्री तौर पर जो एग्री करते हैं, चाहे वो उसकी सलबी औलाद में से हो या ना हो, वो सब उसकी कबील में शामिल हो जाते हैं। तो अब आदम की वो औलाद जो कि शैतान से फिक्री मुनासिबत रखती है, उससे एग्री करती है, ठीक है, तो वो भी उसके कबील में शामिल हो गए। जैसे कि ये बागी कुफार जो होते हैं, यानी जो दुश्मन कुफार होते हैं, हर काफिर नहीं होता ऐसा, लेकिन बागी कुफार जो होते हैं वो उसके कबील में से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर वो जो पिछली शायद किसी क्लास में बात भी हुई थी ना कि शैतान ये जो जितने जिन हैं वो क्या सारे इबलीस की औलाद में से हैं, तो आप में से किसी ने फिर वो हजरत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह की किताब से फिर उसका रेफरेंस भी दिया था। तो साजिश ने फिर अपने एक यानी आलिम और शेख दोस्त से भी इसको डिस्कस किया था, तो यही बात क्लियर हो रही थी कि हाँ इसके बारे में बड़े अकाबिर उलमा का इख्तिलाफ है कि क्या सारे जिन इबलीस की औलाद में से हैं या इबलीस की औलाद के अलावा भी दूसरे जिनों की भी औलादें हैं। तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिन्नों में बहुत से मोमिन जिन भी होते हैं, ठीक है। तो इस आजिज ने जब उनसे कहा ना कि ये बात तो जरा समझ में मुश्किल से आती है कि जो मोमिन जिन हैं वो इबलीस की सलबी औलाद में से होंगे, बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग्स में से होंगे मोमिन जिन, ये बात जरा मुश्किल से समझ में आती है, ये नहीं समझ में आती। तो उन्होंने फरमाया है कि वाकई आपकी ये जो तावील है ना ये बड़ी उम्दा तावील है कि जो मोमिन जिन है ना वो इबलीस की सलबी औलाद में से समझ में नहीं आते कि कैसे हुए, ठीक है ना, क्योंकि इबलीस का तो मामला आपको पता है ना सबसे ज्यादा घटिया, सबसे ज्यादा बुरा, तो उसने तो कोई निगाह करके कोई थोड़ी उसकी औलादें होती हैं, कि भाई कुछ जो है वो नेक बन गए, कुछ जो है वो बुरे बन गए, उसकी तो सारी ही औलाद वलद जिना जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब उसमें से नेक परहेजगार मुत्तकी इबादत गुजार जिन कहाँ से पैदा हो गए? तो बजाय यही समझ में आता है कि जिनों को तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से बहुत पहले तख्लीक कर लिया था, है ना। तो सिर्फ एक जिन को तख्लीक नहीं किया होगा बल्कि कई जिनों को, यानी एक को किया होगा, फिर उससे जो है वो बहुत सारी औलादें हुई और उनमें से एक जो है वही इब्लीस था, ठीक है। लेकिन उसके अलावा और भी जिन थे तो जिनकी औलादें जो है फिर आगे जाकर के कुछ उनमें से नेक हुई और ज्यादातर उनमें से बुरी हो गई। बहरहाल तो कबील की जहां बात हो रही थी, तो कबील के अंदर जो है वो इब्लीस की औलादें भी शामिल हो गई, चाहे वो जैसे भी पैदा हुई हो, और बाकी सारे जिन भी जो उससे एग्री करते हैं और इंसान भी जो कि उससे एग्री करते हैं, वो सारे के सारे उसके कबील के लोग हो गए। तो उनका मामला क्या है कि ये तुम्हारा ऐसा दुश्मन है कि वो और उसके साथी तो तुमको देखते हैं, तुम उनको नहीं देखते, इसलिए उनका मकरूह फरेब तुम पर चल जाने के इम्कान ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे हम रोक लेते हैं और बाकी हम अभी क्लास में पढ़ेंगे। आपने जो एक कोई सवाल वगैरह जो लिखा है उसको देख करके फिर क्लास खत्म करते हैं कि ये लफ्ज कबील, क्या उर्दू वाला लफ्ज कबीला इसी से है? जी, जवाब आ गया। अच्छा चले, ठीक है ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته